ప్రాయషు భద్రేషు నష్టప్రాయషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీమద్ భాగవతం పహలా స్కంద్ 8వా అధ్యాయ. మహారాణి కుంతీ ద్వారా ప్రార్థన తథా పరీక్షిత్ కి రక్షా. శ్లోక సంఖ్యా 25. విపదః సంతు తాః శశ్వత్ పునః తత్ర తత్ర జగద్గురు భవతః దర్శనం యత్ స్యాత్ అపునః భవదర్శనం. విపదః శశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురు దర్శనం యత్ స్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం. విపదః శశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురు భవతో దర్శనం యత్ స్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం. విపదః సంతు విపదః సంతు శశ్వత్ తత్ర జగద్గురు భవతో దర్శనం యత్ స్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం.
విపదా సంతుతా శశ్వత్ తత్ర జగద్గురు భవతు దర్శనం యస్య పునర్భవ దర్శనం.
విపదా సంతుతా శశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురు
పునర్భవదర్శనం.
విపదః విపత్యా సంతు తాః సారి శశ్వత్ పునః పునః తత్ర వహ తత్ర తథా వహ జగద్గురు ఏ జగత్ కే స్వామి భవతః ఆప్కి దర్శనం భేంట్ యత్ జో స్యాత్ హో అపునః ఫిర్ నహీ భవ దర్శనం. జన్మ మృత్యు కో బారంబార్ దేఖనా. అనువాద్ ఔర్ తాత్పర్య శ్రీల ప్రభుపాద్ ద్వారా. మే చాహతీ హూ కి యే సారీ విపత్తియా ఫిర్ ఫిర్ ఆయే జిస్సే హమ్ ఆప్కా పునః పునః దర్శన్ కర్ సకే. क्योंकि आपके दर्शन का यह अर्थ है कि हमें बारंबार जन्म मृत्यु को नहीं देखना होगा। तात्पर्य, सामान्यता आर्थ जरूरतमंद बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा गुमराह होने के कारण भगवान के पास नहीं फटकते। अतएव पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करना जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना है। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आएं, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, जो अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति लाभ कर सकता है जितनी सरलता से गोखुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रहता जहां पग पग पर संकट हो। भगवत गीता में भगवान ने इस जगत को आपत्तियों से परिपूर्ण कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी पुरुष बिना यह समझे कि यह स्थान आपत्तियों से पूर्ण है, इन आपत्तियों के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही पता नहीं होता जो आनंदमय तथा निरापद है। अतः चतुर मनुष्य का कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतएव तथा कथित आपत्तियां मिथ्या होती हैं। स्वप्न में मनुष्य अपने को शेर द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो शेर रहता है न आपत्ति, यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भक्ति द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यं ददाति स्वगदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो कुंती महारानी एक ऐसी प्रार्थना यहाँ पर कर रही है जो साधारण दृष्टि से देखा जाए तो बहुत विचित्र है। वो कह रही है, विपदः संतु ताह शश्वत तत्र तत्र, पुनः पुनः मेरे जीवन में ऐसे विपत्तियां आते रहे। ऐसे कौन व्यक्ति है जो अपने ऊपर विपत्तियों के लिए प्रार्थना करेगा? ऐसे नहीं देखा जाता कहीं। पहले तो अनेक लोग नास्तिक हैं, और जो नास्तिक नहीं भी हैं, जो अपने मंदिर चर्च मस्जिद आदि में जाते हैं, वो कुछ सुख या दुख से राहत मांगने के लिए जाते हैं। कोई ऐसे प्रार्थना नहीं करता है कि मुझे दुख दीजिए, मुझे कष्ट दीजिए, कि बहुत दिन हुआ हम बहुत सुखी रहे हैं, अभी हम दुख क्या चीज़ है भूल गए हैं, इसलिए अभी हमें दुख थोड़ा तो दे दीजिए। ऐसे कोई नहीं चाहता। तो फिर यह कुंती महारानी ऐसा क्यों चाह रही है? बड़ा विचित्र है। क्या कारण हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर दुख को चाहे, दुख आ जाए ऐसे इच्छा करे? इच्छा ही नहीं बल्कि प्रार्थना करे। एक चीज तो ये है साधारण स्तर कि व्यक्ति दुखों को नहीं चाहता और दुखों को टालने के लिए, दुखों को रोकने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। दूसरे श्रेणी का आदमी वो है जो दुख आने पर उनको सहन करना सीख लेता है बिना कोई शिकायत किए हुए, किसी को दोष नहीं देता। और इससे ऊपर स्तर है जब भक्त निमंत्रण दे रहा है कष्ट को। कुंती महारानी कहती हैं कि जितने सारे कष्ट आते रहे पुनः पुनः, तो क्या कुंती महारानी ठीक से प्रार्थना नहीं कर रही है, या दुख के कारण कुछ उनके बुद्धि में कुछ ऐसे परिणाम हो गया है कि ऐसा कुछ मांग रही है? नहीं, कुंती महारानी बहुत बुद्धिमान है। यद्यपि कुंती महारानी ने कभी भी पाठशाला में जाकर सीखा पढ़ा नहीं था, वैदिक काल में लड़कियों को पाठशाला में पढ़ाया नहीं जाता था। जो भी लड़कियां पढ़ती थी वो घर में पढ़ती थी, जो भी सिखाया जाता था घर में ही सिखाया जाता था। लेकिन फिर भी कुंती महारानी इतने बुद्धिमान और इतने ज्ञानी थी कि उनके इस श्री कृष्ण की स्तुति के द्वारा हम जान सकते हैं कि वो परम दार्शनिक हैं। आजकल के बड़े बड़े दार्शनिक भी इस तरह के दार्शनिक नहीं है जितना कि कुंती महारानी थी। तो ये है वैदिक सभ्यता। स्कूल में न जाकर भी इतनी सुसंस्कृत अवस्था, सभ्य अवस्था, आध्यात्मिक जीवन में इतनी पहुंची हुई, क्योंकि वैदिक संस्कृति भगवान कृष्ण के भक्ति पर आधारित है। और कुंती महारानी का यही कारण है। वो कहती है कि जब कोई व्यक्ति को दुख आता है तो वो भगवान को याद करता है साधारण तौर से। श्री प्रभुपाद जी वो तुलसीदास का दोहा बोलते थे ना, दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई। सुख में जो हरि भजे तो दुख कहाँ से होए, यही है ना। दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई। तो सभी लोग दुख के समय कृष्ण भगवान के पास जाते हैं, लेकिन जब जीवन में सुख आता है तो भगवान को सब भूल जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति सुख में भी भगवान को भजना शुरू करे तो उसको दुख ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका मन इतना नियंत्रित हो जाएगा, आनंद से पूर्ण हो जाएगा भगवान की भक्ति करते करते कि उसको दुख लगेगा ही नहीं। भले उसके जीवन में विपत्तियां आती रहें पग पग पर, फिर भी वो विचलित नहीं होगा, वो सुखी अवस्था में रहेगा। तो ये प्रभुपाद जी बताया करते थे कि ये लोगों की आदत है। यदि यहां दुनिया में सभी लोग सुखी रहते भौतिक जगत में, तो भगवान के पास कोई नहीं जाता। सभी लोग सोचते कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता है, और यहीं पे अपने इंद्र तृप्ति करते रह जाते। लेकिन ऐसे नहीं होता। यहां सभी लोग सुखी नहीं है, बल्कि कोई सुखी नहीं है। वैसे कल ही मंदिर में हम ये श्लोक चर्चा कर रहे थे कि परसों, कि दो प्रकार के लोग ही सुखी होते हैं इस जगत में। एक है मूढ़तम लोके, जो मूढ़तम है, सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति, वो बड़ा सुखी है। और दूसरा बुद्धे परम गता, जिसकी बुद्धि या जो व्यक्ति साधारण बुद्धि से परे हो चुका है, जो आध्यात्मिक स्तर में स्थित है, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, भगवान का शुद्ध भक्त है, तो ये दो ही प्रकार के लोग सुखी है दुनिया में। दूसरा है सबसे बड़ा मूर्ख, जो इतना मूर्ख है कि उसको अपने दुखद अवस्था की पहचान भी नहीं है। जैसे जो शराब पी के पड़ा रहता है जमीन के ऊपर, उसको पूछेंगे आप कैसे हो, वो क्या उत्तर देगा? मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसको यदि बताया जाए कि भाई तुम नीचे गिरे हो, पड़े हो, गटर में पिड़कड़े हो, वो उल्टा आपसे कहे कि नहीं, आप दुखी हो, मैं सुखी हूं। तो दुनिया में भी लोग ऐसे अपने दुख को पहचानने के लिए भी तैयार नहीं है। दुख को होते हुए भी अपने आप को बहुत सुखी समझते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि मनुष्य योनि की ये एक विशेषता है कि व्यक्ति दुखी होते हुए, दुखों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को सुखी समझता है। तो जो व्यक्ति अपने दुखद अवस्था को जान नहीं सकता है, वो पशु है। तो यहां गंभीरता से नहीं कहा जा रहा है कि ये सबसे सुखी आदमी, मतलब समझना चाहिए कि वो केवल मूर्ख है, वो सोच रहा है ऐसे। परंतु सच्चे सुखी व्यक्ति कौन है? जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है। तो और बीच में जो बीच में लोग हैं, वो सब दुखी है। क्लिश्यति अंतरितो जनः, तो अंतरित मतलब इन दोनों श्रेणियों के बीच में जो है जनः, जो लोग हैं, क्लिश्यति, वो तड़प रहे हैं दुख के मारे। केवल मूर्ख है वो सुखी है अपनी जगह में, और जो शुद्ध भक्त है वो अपनी जगह में खुश है, और हम बीच वाले हम लोग दुखी हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि हमने श्री कृष्ण के भक्ति का पथ स्वीकार किया है, अवश्य सारे समस्याओं का समाधान जल्दी से ही हो जाएगा। तो जो दुख भगवान देते हैं इस संसार में, हमें जानना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है। ये दुख का कारण क्या है संसार में? दुख का कारण ये है कि हमको इस संसार के का सही परिचय करा देना, और ये बता देना कि वास्तव में ये संसार में हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में दर्द होता है, जब उंगली जल जाती है, जब आग लग जाता है उंगली को, तो दर्द होता है ना, जलने का अनुभव होता है, हमको दर्द होता है। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ये शरीर हमको चेतावनी दे रही है, कि देखो ये जगह ठीक नहीं है, तुम्हारी उंगली सही जगह में नहीं, उसको दूर करो। जैसे समझ लो कि हम दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, उंगली हमारा आगे चला गया। यदि दर्द नहीं होता तो उंगली सारा खत्म हो जाता था। दर्द होता है आग लगने पर, इसलिए हम तुरंत उंगली को निकाल लेते हैं और उंगली बच जाता है। ये तो उंगली तो जल के राख हो गया होता यदि दर्द नहीं हुआ होता। तो दर्द है इसलिए है, उंगली को जल्दी से निकाल लेते हैं और उंगली बच जाता है। उंगली घायल हो जाता है लेकिन बच तो जाता है। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत में भगवान ने दुख इसलिए बनाया है कि जीव समझ ले कि ये ठीक जगह नहीं, यहां से निकलो। जैसे उंगली को आग लगने से पता चलता है कि उंगली को यहां से निकालो, उंगली ठीक जगह नहीं है, उसी प्रकार से यहां संसार में दुख इसलिए है कि जीव को पता चले कि यहां से निकलो, यहां रहो नहीं। तो कहां निकलो मतलब कहां जाओ, आत्महत्या कर लो, कैसे क्या कर लो? नहीं, आत्महत्या करने से तो पुनर्जन्म मिलेगा बल्कि और कष्ट बढ़ जाएगा। तो निकलो मतलब मुक्त होकर भगवान के धाम में जाना। तो जब दुख हमारे जीवन में आता है इसलिए तो भगवान के शरण में जाते हैं, नहीं तो कोई नहीं जाता भगवान के पास। वो सोचता यही वैकुंठ है तो हम क्यों जाएंगे भगवान के पास, बल्कि सब लोग नरक जाने के लिए भी तैयार होते हैं। जैसे कल वो कथा कहानी बता रहे थे कि एक बार किसी को पूछा, एक भक्त जाके कहीं प्रचार कर रहे थे, एक आदमी बहुत शराब पीता था, तो उसको भक्त ने जाके बोला कि देखो तुम ऐसे शराब पियोगे तो तुम नरक में चले जाओगे। तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा, तो मैं अकेला तो नरक में शराब नहीं पीता हूँ, तो दूसरे भी लोग शराब पीते हैं, वो सुरेन बाबू भी पीता है, हाँ वो भी नरक जाएगा। अच्छा, वो विक्रम बाबू भी पीता है, हाँ वो भी जाएगा। और ऐसे कई लोगों के नाम लिए, वो सब जाएंगे। अच्छा, फिर वो आदमी, वो इतना मांस खाता है, इतना ये पाप करता है, वो पाप, वो भी जाएगा। ऐसे जितने भी उसके पहचान के लोग थे, एक 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 सबके नाम लिए। तो ये वो जो कार्य करता है वो बोला, तो उसने बोला हाँ वो भी नरक जाएगा। तो फिर ये आदमी बोलने लगा, तो अच्छा है ना, फिर मेरे सारे पहचान वाले सारे दोस्त समूह सब नरक में जाएंगे, नरक में जाके आनंद करेंगे, हम लोग सब लोग साथ में ही जाएंगे ना, तो वहां क्या बुरा है नरक में जाना, तो नरक में जाके खूब मजा करेंगे, कोई मतलब नहीं, यहाँ जाके मजा करो, साथ में ही रहेंगे ना हम सब, पूरे हमारे मित्र परिवार सब साथ में रहेंगे, नरक में जाके खूब मजा करेंगे। तो ऐसे है लोगों का अज्ञान। तो दुख इसका ये बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। दुख नहीं होता तो हम भगवान के पास नहीं जाते, इसलिए दुख ही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर, हमको दिखाने के लिए कि चलो मेरे शरण में आना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए कुंती महारानी कह रही हैं कि जब हमारे जीवन में सुख आएगा तो हम आपको भूल जाएंगे, इसलिए हमको दुख में ही रखना। ऐसी प्रार्थना कुंती महारानी की है। हालांकि कुंती महारानी शुद्ध भक्त है, उनको ऐसे दुख की आवश्यकता नहीं है भगवान की भक्ति करने के लिए, साधारण व्यक्तियों की तरह। फिर भी साधारण व्यक्तियों को सिखाने के लिए वो ऐसा बोल रही है। और ऐसा करके कुंती महारानी अपनी भक्ति के स्तर को प्रकट करा रही है। जब हमारे जीवन में ऐसे दुख आएगा, विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र, पुनः पुनः ऐसे जब आएगा तो उस समय तत्र तत्र हे जगत गुरु क्या होगा, भवतः दर्शनम यत् स्यात्, आपका दर्शन होगा। जब बहुत दुख हो जाता है तो हम भगवान का स्मरण करते हैं। पांडव लोग क्या करते थे, जब दुख होता था कृष्ण का स्मरण करते थे, कृष्ण उपस्थित हो जाते थे। जैसे दुर्वासा मुनि जब आए, वो अक्षय पात्र की कथा हुई, लीला हुई, तो उस समय द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण चले आए। तो ऐसे जब वनवास में हुआ करते थे पांडव, तो कृष्ण समय समय पर उनके पास में चले आते थे। तो जब भी पांडवों को कष्ट होता था, श्री कृष्ण अवश्य उनके साथ में आते थे, उनको दर्शन देते थे। तो कुंती महारानी कहती हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आएगा तो आपका दर्शन होगा, और जब आपका दर्शन होगा तो क्या होगा, अपुनर्भव दर्शनम, हमको भव रोग का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। भव मतलब ये संसार, ये संसार को भव भव लोक कहा जाता है। क्यों? भव मतलब होना, क्या होना, बूढ़ा होना, बीमार होना, मृत होना, पुनर्जन्म लेके जीवित होना, ये है भवलोक। तो ऐसे भवलोक से का दर्शन हमें नहीं होगा, अपुनर्भव दर्शनम, फिर से हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे नहीं, हम निकल जाएंगे आपका दर्शन करने से। तो कुंती महारानी कहती हैं, दुख आने से भगवान का दर्शन होता है या स्मरण होता है, भगवान का स्मरण और दर्शन करने से जन्म मृत्यु के चक्र से आदमी छूट जाता है और हमेशा के लिए कष्टों से मुक्त हो सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि वास्तव में यहाँ जीव माया के चंगुल में फंसा हुआ है, इसलिए आत्मा का स्वरूप आनंद प्रद होने के बाद भी वो जीव इस बात को याद नहीं रखता है, और जीव सोचता है कि मैं दुखी हूं। जैसे प्रभुपाद यहां बता रहे हैं, वास्तव में ये स्वप्न का सुख और स्वप्न का दुख है। ये जो भी सुख और दुख हम अनुभव करते हैं इस दुनिया में, वो स्वप्न का सुख और दुख है। तो जो उदाहरण प्रभुपाद जी यहां दे रहे हैं वो है, स्वप्न में मनुष्य अपने को शेर द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो शेर रहता है न आपत्ति, यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भक्ति द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। तो संसार में जो भी हम दुख आदि अनुभव करते हैं, वास्तव में ये केवल शारीरिक स्तर पे है, ये माया के प्रभाव के कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रूर बन जाएं और जब दूसरों के दुख को देखें तो उनको बोले ये सब माया है, तो करुणा की भावना नहीं रहेगी। जब करुणा की भावना नहीं रहेगी तो हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भक्त का पहचान होता है कि दूसरों के दुख को देखकर उसको करुणा आती है, उसको दुख होता है, इसलिए भक्त का पहचान होता है पर दुख दुखी, अन्यों का दुख देखकर वो दुखी होता है, पर दुख सुखी नहीं होता। अन्यों का दुख देखकर सुखी होना या पर सुख दुखी, अन्यों का सुख देखकर दुखी होना, ऐसे नहीं। अन्यों का दुख देखकर वो दुखी हो जाता है, ये वैष्णव का पहचान है। नरसिंह मेहता वाला भजन है ना, वैष्णव जन तो तेने कही जे पीड़ पर जाने रे, सुना है आपने, नरसिंह मेहता का प्रसिद्ध भजन है। वैष्णव कौन होता है? वैष्णव जन तो तेने कही, वैष्णव उसको कहते हैं जो पीड़ पराए जाने रे, जो अन्यों की पीड़ा को जान सकता है। तो केवल वैष्णव ऐसा नहीं कि जो कृष्ण की सेवा करता है वगैरह, वो तो है ही, लेकिन वैष्णव के गुण कैसे होने चाहिए, पीड़ पराए जाने रे, जो अन्यों की पीड़ा को जान ले और करुणा की भावना रखे, ये नहीं कहे कि केवल अरे तुम क्या दुखी हो, ये सब माया है, भूल जाओ। जैसे कोई बहुत दुखी है उसके पास जाके ऐसे बोलेंगे तो उसका दिल और दुखी हो जाएगा। एक बार एक मायावादी था तो ऐसे ही जाके सबको बोलता था, ये सब जब भी कोई कष्ट में आता था बोलते ये सब माया है, ये दुख है ही नहीं, सब कष्ट सब माया है। तो एक बार हुआ ये कि एक हाथी ने आके उनका सारा गांव जो है वो नष्ट कर दिया। तो सभी लोग रो रहे थे, हाय हाय कर रहे थे, बहुत लोग मर भी गए थे। तो ये मायावादी जाके वहां बोलने लगे, सब माया है, कुछ नष्ट नहीं हुआ, ना तुम्हारे लोग मर गए, कुछ नहीं हुआ, सब माया है। तो उस समय वो हाथी फिर से आया और ये मायावादी का पीछा करने लगा। तो मायावादी भागने लगा जान के डर से। तो जब वो भाग रहा था किसी ने पूछा, अब क्यों भाग रहे हो, माया है ना। तो मेरा भागना भी माया है बोला। इसलिए इसको भी स्वप्न समझो तो क्या फायदा, केवल उतने ही देने के लिए बोलेंगे ये सब माया है, भूल जाए। लेकिन अपने ऊपर जब आती है तो फिर हम भूल जाते हैं कि ये माया है। उस समय हम समय लगता है कि ये बहुत सही है, कितना दुख है ये, है ना। तो केवल कहने के लिए ये माया है, दुख है, ऐसा नहीं। जब तक हम उस स्तर में नहीं है हम ऐसा, हाँ सोचना तो चाहिए, लेकिन अन्यों को थोड़ा बहुत उपदेश भी दे सकते हैं, परंतु करुणा की भावना रखनी चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए अध्यात्मिकता के नाम पर। इसलिए ये माया है, सपनों का दुख है जानकर भी ये स्वप्न अवस्था से जागना कैसे है, ये अपने को देखना चाहिए। और प्रभुपाद यहां बताते हैं कि तरीका क्या है। नर्मदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। जो नर्मदा भक्ति का आश्रय लेता है वो बड़े आसानी से वो इस स्वप्न अवस्था से छूटकर मुक्त हो सकता है और आत्म साक्षात्कार में स्थित हो सकता है। नहीं तो ये एक जागृत अवस्था का स्वप्न है। एक तो रात्रि की अवस्था में जब हम सोते रहते हैं तो रात का स्वप्न होता है, लेकिन जब जागृत अवस्था में हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो ये जागृत अवस्था का स्वप्न है। दोनों ही स्वप्न है, कोई खास फर्क नहीं है इन दोनों में, एक जागता हुआ स्वप्न, एक सोता हुआ स्वप्न। यदि मैं अपने आप को शरीर सोचता हूं वो उतना ही सपना है जितना कि सपने में देखना कि शेर मेरा पीछा कर रहा है, वो भी सपना है, ये भी सपना है। तो दोनों सपनों में अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं। इसलिए सत्य ये है कि हम जीव हैं, हम श्री कृष्ण के दास हैं और श्री कृष्ण की सेवा करके नर्मदा भक्ति द्वारा हम भगवत धाम को पहुंच सकते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं और स्वप्न अवस्था से सदैव परे हो सकते हैं, सत्य की अवस्था में स्थित हो सकते हैं। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा।